ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्र दरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। कैकेयी ने दशरथ महाराज से वो दो वरदान मांग ही लिए, जैसा कि मंथरा ने बतलाया था। तुरंत प्रातः काल में राम को बुलवाया गया। जैसे ही श्री राम कैकेयी और दशरथ महाराज के सामने आए, अपने पिता के दुखद अवस्था को देखकर बहुत चिंतित हो गए और पूछने लगे कि हे पिताजी, क्या मेरे तरफ से कोई गलती हुई है? आपके प्रति क्या मैंने कोई बड़ा अपराध किया है जिसके कारण आप इतने दुखी लग रहे हो? तो कैकेयी देवी ने उत्तर दिया कि राम, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पिताजी कुछ तुमसे कहना चाहते हैं, परंतु कहने से हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि शायद तुम्हें बुरा लगे। वैसे बात यह है कि मैंने दो वरदान मांग लिए हैं। तुम्हारे पिताजी ने अनेक वर्षों पूर्व मुझे वचन दिया था कि वो मेरे ये दो वरदान पूर्ण करेंगे, और मैंने आज उनको मांग लिए। यदि तुम्हारे पिताजी के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि ये दो वरदान कौन से हैं। तो श्री राम ने अपने विमाता कैकेयी देवी से कहा कि हे माते, आपके मन में ये संशय कैसे उत्पन्न हुआ कि मैं मेरे पिताजी के आदेश का पालन नहीं करूंगा? निश्चित ही जो भी आदेश है आप बिना संकोच किए हुए बताएं। तो कैकेयी देवी ने बताया कि पहला वरदान जो मैंने मांगा था वो ये था कि भरत को राजगद्दी पर बैठना चाहिए। आज भरत युवराज नियुक्त हो जाने चाहिए। और दूसरा वरदान ये था कि तुम वन में जाओगे 14 वर्षों तक, वल्कल आदि धारण करके रहोगे ऋषि मुनियों की तरह, और यही तुम्हारे पिताजी के आदेश तुम्हारे लिए हैं। परंतु इस समय तुम्हारे पिताजी हृदय की दुर्बलता के कारण तुमसे ये कहने से डर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। वैसे तो तुम जानते हो कि इक्ष्वाकु राजा के जितने भी वंश के जितने भी राजा हैं वो सदैव धर्म परायण रहे हैं और सत्य के मार्ग में चले हैं। तो तुम्हारे पिताजी की तुम्हें सहायता करनी होगी ताकि वो इस सत्य के मार्ग से हटे नहीं। उन्हें मुझे ये वचन दिए हैं, दो वरदान दिए हैं, और उनको पूर्ण करना होगा। तो इसी समय हे राम, तुम्हें यहां से निकलना होगा। और श्री राम ने कहा कि मैं इसी वक्त निकलता हूं। जैसे श्री राम ने कैकेयी की बातों को सुना, वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं कि उनका मन बिल्कुल तनिक भी विचलित नहीं हुआ, कोई दुख नहीं, खेद नहीं, कोई संकोच नहीं, घृणा नहीं, क्रोध नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं। समभाव से अपनी माता कैकेयी की बातों को सुनने लगे और तुरंत उत्तर दिया कि अवश्य, जैसे आपकी इच्छा है मैं करने के लिए तैयार हूं। और फिर श्री राम कहने लगे कैकेयी से कि वैसे आपने सोचा भी कैसे कि मेरे मन में कोई संकोच हो सकता है मेरे पिताजी के आदेश के पालन करने में? और वैसे मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि आपने ये ठीक समझा कि यदि आप मुझसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो पिताजी के माध्यम से करवाना चाह रहे हैं। यदि आप मुझे प्रत्यक्ष बोल देते हैं कि तुम वन में चले जाओ और भरत को राजा बनने दो, बड़े प्रसन्न चित्त से मैंने आपके प्रस्ताव को, आपके आदेश को स्वीकार कर लिया होता। तो फिर भी जैसी इच्छा आपकी, मैं तुरंत निकलने के लिए तैयार हूं। देखिए, भगवान हर दृष्टि से परिपूर्ण है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? पराशर मुनि जो कि व्यासदेव जी के पिता हैं, उन्हें भगवान शब्द का विश्लेषण किया है, व्युत्पत्ति की है भग और वान। भग अर्थात समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, वान मतलब जो मालिक हैं, जिनके पास है। तो जो समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न हैं, षडैश्वर्य पूर्ण हैं, जो इन ऐश्वर्यों को धारण करते हैं परिपूर्ण मात्रा में वो है भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञानं वैराग्ययोश्चैव सन्नं भगः इति गणा। विष्णु पुराण का ये श्लोक है। तो कौन से वो छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं? सबसे पहला है धन, दूसरा है वीर या शक्ति, तीसरा है यश, चौथा है ज्ञान, फिर वैराग्य। ये वैराग्य भी एक ऐश्वर्य है और वैराग्य की का ऐश्वर्य भी भगवान में परिपूर्ण मात्रा में विद्यमान है। तो भगवान श्री राम ने अपने वैराग्य के ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। जो व्यक्ति बिल्कुल विरक्त है, यदि उससे कोई चीज छीन ली जाती है तो बिल्कुल विचलित नहीं होता है। दुख संसार में क्यों होता है? क्योंकि हम आसक्त होते हैं। जितनी अधिक हमारी आसक्ति होती है, हमारा लगाव होता है किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, उतना ही दुख हमें होता है जब वो चीज हमसे छीन ली जाती है। और अंततः हर चीज और हर व्यक्ति से हमें अलग होना ही होगा, आज नहीं तो कल। ये संसार का नियम है, प्रकृति का कानून है। इसलिए जो व्यक्ति सुखी होना चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है, उसे निरासक्त होकर रहने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब ये चीजें छीन ली जाएंगी काल के प्रभाव से, मृत्यु के समय या कभी कभी मृत्यु के पहले भी, तो फिर व्यक्ति विचलित नहीं होगा। जब हम किसी चीज को अपना मानते हैं तो फिर बहुत दुख उसमें से उत्पन्न होता है, उस भावना में से। इसलिए सुख का रहस्य ये है कि हम निरासक्त रहें। पद्म पत्र इवांभसा, एक पद्म के पत्र के समान, जो इस दुनिया में या किसी जल में रहते हुए भी स्पर्श नहीं करता उस जल का, उसकी जड़ का। तो उसी प्रकार से संसार में रहते हुए भी हमें संसार का नहीं होना चाहिए, संसार से विरक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा वैराग्य गृहस्थ आश्रम में भी हो सकता है और बल्कि होना चाहिए। यही सच्चा गृहस्थ आश्रम है। श्री राम तो गृहस्थ थे, तो उन्होंने प्रदर्शित किया कि सच्चा वैराग्य क्या होता है। यदि किसी ने वैराग्य के पथ को स्वीकार किया है, वन में भी रहता हो व्यक्ति, परंतु उसका मन संसार के विषय में भ्रमण करता है, तो ऐसे वैराग्य का कोई अधिक लाभ नहीं है। परंतु कोई व्यक्ति संसार में रहते हुए भी विरक्त रहता है, भगवान की सेवा करते रहता है, तो वो भला। तो श्री राम ने अपने इस ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। कितना मुश्किल है ये इस संसार में। हम देखते हैं कि लोग इतने आसक्त होते हैं, जनस्य मोहो यम अहम ममेति, सारी जनता जो है वो इस मोह में पड़ी हुई है। किस प्रकार के मोह में? अहम मम इति, मैं और मेरा, ये शरीर मैं हूं, और शरीर से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं और वस्तुएं हैं वो सब मेरे हैं। ये हमारे मोह का और दुख का मूल कारण है। तो देखिए श्री रामचंद्र कितने निरासक्त थे। वैसे वैदिक सभ्यता में एक प्रथा थी कि क्षत्रिय परिवारों में जब राजकुमार नौजवान हो जाते थे तो राजा उनको तपस्या करने के लिए वन में भेज देते थे ताकि अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो जाएं और समझ लें कि वैराग्य का जीवन कैसा होता है। क्योंकि जब वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने का समय आता था तो उन्हें अपने राज्य आदि को त्याग कर वन में जाना पड़ता था। ऐसे कितने उदाहरण हैं शास्त्रों में। और यदि ऐसे कम आयु से ही प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया हुआ होगा उस व्यक्ति ने वैराग्य के मार्ग में, तो फिर 50 वर्ष की आयु में वो कैसे वन में चले जाएगा। पंचाशोर्ध्वम वनम व्रजेत, 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति को वन में प्रस्थान करना चाहिए। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम आजकल तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वन ही नहीं रहे हैं, और दूसरी बात कोई अपने टेलीविजन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बुढ़ापे में भी टेलीविजन के सामने दिन भर बैठे रहते हैं, अपने मूल्यवान मनुष्य जीवन का समय व्यर्थ गवाते हैं। तो आजकल वानप्रस्थ का मतलब है अपने संसार के आसक्तियों से, जिम्मेदारियों से मुक्त होना और पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाना। तो खैर, श्री रामचंद्र ने साबित कर दिखाया कि सच्चा वैराग्य क्या होता है और हमें भी कैसे निरासक्त होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में भी ये एक खतरा रहता है कि हम किसी पद से आसक्त हो जाएं, किस प्रतिष्ठा से आसक्त हो जाएं, प्रसिद्धि से आसक्त हो जाएं। तो आध्यात्मिक जीवन एक तलवार के धार के समान है, इसलिए आध्यात्मिक पथ में चलने वाले व्यक्ति को बहुत सावधान रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। तो भगवान श्री राम सिखा रहे हैं हमें, मर्त्यावतारस त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। हनुमान जी श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में कहते हैं श्रीमद् भागवत के, कि भगवान श्री राम केवल राक्षस अर्थात रावण का वध करने नहीं प्रकट हुए यहां पर पृथ्वी लोक में, रक्षो वधायैव न केवलम विभो। जो विभु हैं, परम सत्य भगवान श्री राम हैं, केवल राम का वध करने, रावण का वध करने नहीं आए। किस लिए आए? मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम, पृथ्वी लोक को मर्त्य लोक भी कहते हैं। इस मर्त्य लोक में रहने वाले लोगों को उपदेश और शिक्षा प्रदान करने के लिए श्री राम प्रकट हुए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो श्री राम ने अपने ही उदाहरण से, अपने ही जीवन से सिखलाया है, सबसे अच्छा प्रचार होता है अपना आचरण। केवल हमारी वाणी से हम लोगों का हृदय नहीं बदल सकते, उनको भगवान के पथ में नहीं ला सकते। यद्यपि वाणी का भी महत्व है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारा आचरण। तो भगवान स्वयं अपने आचरण से दुनिया को सिखलाते हैं कि आदर्श जीवन कैसे होना चाहिए। इसलिए तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। आदर्श मनुष्य कैसे होना चाहिए उन्होंने साबित कर दिखाया। तो फिर श्री राम ने जब स्वीकार कर ली कैकेयी देवी का प्रस्ताव, अपने पिता का आदेश, फिर वहां से निकलते निकलते वो कहने लगे, राज्य को त्यागना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुरंत त्याग देता हूं। मेरी इच्छा केवल यही है कि मेरे पिता और आप भी हे माते मेरे प्रति अनुकूल भाव रखेंगे। देखिए कितना उदार हृदय। कौन है ऐसा व्यक्ति आजकल के जमाने में जो ऐसी बातें करेगा, जिसके मन में ऐसे विचार आएंगे? क्या ये संभव है? थोड़ा धन हमसे छीन लिया जाता है तो मन को कितना कष्ट होता है। लेकिन यह राम के पास किस प्रकार का ऐश्वर्य था? दशरथ महाराज तो विश्व सम्राट थे, अश्वमेध यज्ञ आदि संपन्न कर चुके थे, और ये सब श्री राम को मिलने जा रहा था। लेकिन बस श्री राम यूं ही ने उनको त्याग दे दिया। त्यागने के लिए सीखना चाहिए, सुखी होने के लिए। श्रीमद् भागवत में कथा आती है एक अवधूत ब्राह्मण की, जो महाराज यदु को बतलाते हैं कि मेरे 24 गुरु हैं, निसर्ग में प्रकृति में मैंने अनेक चीजों से, व्यक्तियों से, यहां तक कि पशुओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। तो शयन पक्षी होते हैं, अंग्रेजी में हॉक कहते हैं इनको। तो हुआ ये कि ये अवधूत ब्राह्मण देख रहे थे कि ये शयन पक्षी एक मांस के टुकड़े को लेकर भोग करने जा रहा था, खाने जा रहा था। ठीक उसी समय अन्य शयन पक्षी थे जिन्होंने देख लिया इस बात को, तुरंत टूट पड़े उस पक्षी के ऊपर, क्योंकि उनको मांस चाहिए था, वो भी भूखे थे। जैसे उस पक्षी ने देखा कि इतने सारे पक्षी मुझे मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या कर दिया उस पक्षी ने, तुरंत उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया और सुख का अनुभव किया। क्यों सुख का अनुभव किया? क्योंकि जब मांस का टुकड़ा छोड़ दिया तो पक्षी अब इस पक्षी के पास नहीं आए, सीधे मांस के टुकड़े के पास गए और आपस में झगड़ते रहे, लेकिन ये व्यक्ति, ये पक्षी मुक्त हो गया। तो अवधूत ब्राह्मण कहने लगे कि संसार में हमें छोड़ने के लिए सीखना चाहिए, चाहे वो स्थूल वस्तुएं हों, चाहे वो अन्यों के साथ हमारे संबंधों में कोई घटनाएं हों, कोई हमें कुछ कह देता है, वर्षों तक हम हमारे मन में रखते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसे बर्ताव किया था, ऐसे हमसे बात की थी, छोड़ देना चाहिए। छोड़ने से सुख का अनुभव होता है। जितना हम इन चीजों को, वस्तुओं को अपने हृदय के करीब रखेंगे, उनसे आसक्त रहेंगे, उतनी कठिनाई होगी। तो ऐसा उदार हृदय श्री राम का था, छोड़ दिया आसान से, एक क्षण में छोड़ दिया। और केवल ये 10-20 हजार रुपयों की बात नहीं थी, 2-4 करोड़ रुपयों की बात भी नहीं थी, सारे विश्व के साम्राज्य की बात थी। तो उधर लक्ष्मण ने सुन ली बात, बहुत क्रोधित हो गए। जल्दी से बात सारे महल में फैल गई, महल के निवासी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि हम क्या सुन रहे हैं। श्री राम अपने माता कौशल्या देवी को खबर सुनाने के लिए निकल पड़े, और जैसे ही वो जा रहे थे वहां से, दशरथ महाराज के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, और निकल भी रहे थे तो केवल ऐसे कि कितने शर्म की बात है, हाय हाय, ऐसे कह के वो अपने आप को भी धिक्कार रहे थे। अपने पुत्र से ये भी नहीं कह सकते थे कि जाओ, और दूसरी ओर अपने पत्नी, अपनी रानी कैकेयी देवी को भी, के मांगों को भी इनकार नहीं कर सकते थे। तो उनकी परिस्थिति बहुत विकट थी। तो श्री राम समझ गए उनकी परिस्थिति को, अपने पिता के प्रति बिल्कुल तनिक भी कोई द्वेष नहीं उत्पन्न हुआ कि मेरे पिता ऐसे अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, बिल्कुल एक बार भी ऐसे मन में ही विचार नहीं आया। बोलने की बात तो दूर है। फिर अपनी माता कौशल्या के पास जब वो गए, कौशल्या देवी भगवान श्री नारायण के श्री विग्रह की सेवा कर रही थी, श्री राम से खबर सुन के विश्वास नहीं कर पाई, बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर से जब होश आया तो बहुत शोक कर रही थी कि शायद अब मैं जी नहीं पाऊंगी। उस समय श्री राम ने बहुत सांत्वना देने का प्रयास किया अपने माता को, परंतु संभव नहीं हो रहा था। लक्ष्मण वहां पर आए, लक्ष्मण बहुत क्रोधित होकर बात करने लगे कि हमारे पिता महाराज दशरथ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, केवल एक स्त्री के से आसक्त होने के कारण बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो जाती है, और हमारे पिता इस आयु में भी इस कमजोरी के शिकार पड़ गए, और ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई अपना पिता क्यों न हो, कोई राजा क्यों न हो, अपना गुरु क्यों न हो, यदि वो धर्म के सिद्धांतों से, धर्म के उसूलों से हट के कोई कार्य करता है तो उसे त्यागना चाहिए। और यदि हे राम आप कुछ करना नहीं चाहते हो तो मैं करूंगा, आप बिल्कुल वन में नहीं जाइए, आप यहीं पर रहिए और मैं देखता हूं कि कौन आपका विरोध करेगा। आवश्यकता यदि पड़ी तो सारे अयोध्या के निवासियों को भी मैं खत्म कर दूंगा, कोई भी यदि आपके सामने आए तो। उधर श्री राम ने लक्ष्मण को सांत्वना देने का प्रयास किया, कौसल्या माता उधर और कहने लगी कि नहीं, देखो मां का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अपने मां के इच्छा को पूर्ण करो, अपने पिता के आदेश के का उल्लंघन करना पालन नहीं करना। लेकिन श्री राम ने कहा कि मेरे पिता के धर्म का पालन मुझे करना चाहिए। वैसे परशुराम जी ने भी अपने पिता के आदेश का पालन किया था, बल्कि पिताजी ने जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी से कहा था कि तुम्हारी मां की हत्या करो। उनके भाई से जब जमदग्नि ऋषि ने ऐसे कहा था तो वो हिचकिचाए थे, जमदग्नि ऋषि ने उनको श्राप देके उनकी हत्या की दी थी। परशुराम जी जानते थे कि उनके पिताजी की शक्ति कितनी है, जब पिता ने आदेश दिया हिचकिचाए नहीं, बिल्कुल तुरंत मां की हत्या कर डाली। और जब पिता प्रसन्न हुए फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो परशुराम ने कहा कि मां को पुनः जीवित कर दीजिए, और जमदग्नि ने रेणुका देवी को जीवित कर दिया। तो राम कहने लगे कि परशुराम जी ने भी अपने पिता का आदेश किया था, यद्यपि वो आदेश बहुत कठिन था फिर भी उन्होंने किया, मैं एक आज्ञाकारी पुत्र हूं, मैंने वचन दिया है मेरे पिता को कि मैं वन में जाऊंगा तो मुझे जाना होगा, इसलिए आप मुझे रोकिए मत। वैसे लक्ष्मण आप बिल्कुल क्रोध नहीं करना, जितने जल्दी भरत यहां राज सिंहासन पर बैठेगा उतने ही जल्दी ये मामला निपट जाएगा, और ऐसे बलपूर्वक राज सिंहासन पर ऐसे बैठना ये मुझे शोभा नहीं देता, इसलिए कृपया मेरे साथ रहो, मेरी बातों में तुम बातों से सहमत रहो और मुझे जाने दो आगे। कौसल्या माता बहुत कुछ कहने लगी और बड़े प्रेम से स्नेह के कारण लक्ष्मण डांटने लगे अपने भाई राम को कि यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो मैं अवश्य करके रहूंगा। बड़े मुश्किल से प्रेम से बातचीत करके किसी न किसी तरह से श्री राम ने सांत्वना दे दी, शांत कराया लक्ष्मण जी को। उधर जब राम सीता देवी के पास में गए तो सीता देवी को भी बहुत दुख हुआ। राम चंद्र भगवान ने आदेश दिया सीता देवी को कि तुम अच्छी तरह से यहां पे रहना और भरत के आदेशों का पालन करना। तो सीता देवी ने कहा कि ये तो मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं आपके बिना रहूंगी। वैसे पत्नी का कोई पति के बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं, वैसे एक माँ है, कोई पिता है, कोई सास बहू बहन भाई पुत्र आदि हैं, इनका सब इनका व्यक्तित्व होता है परंतु पत्नी का नहीं होता, इसलिए मैं तो आऊंगी, तुरंत आऊंगी आपके साथ में। तो श्री राम ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि वन में बहुत कठिनाई होती है, वहां कड़ी धूप होती है तो कभी ठंडी होती है, कभी बारिश कंद मूल आदि के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जंगली जानवर होते हैं, बहुत कठिनाइयां होती हैं। परंतु सीता देवी ने एक नहीं मानी, कहने लगी कि ठीक है यदि आप इतना ही जोर कर रहे हो तो मैं यहीं पे उपवास करके प्राण को त्याग दूंगी। अंत में श्री रामचंद्र को सीता देवी की बात माननी पड़ी। सीता देवी ने कहा कि जब मैं बच्ची थी तो एक ज्योतिष आए थे मेरे पिता के पास, और ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि मुझे अनेक वर्षों तक आगे चल के वन में रहना पड़ेगा, तो वैसे भी जो होना है वो होना है। फिर श्री राम मान गए, तुरंत लक्ष्मण वहां चले आए मैं भी आपके साथ चलूंगा। लक्ष्मण कहने लगे कि आपकी सेवा मैं करूंगा, आप सीता देवी के पास आगे के साथ में चलना और आपके लिए कंदमूल फल सब्जियां आदि मैं लेकर आऊंगा। जहां भी आप रहोगे मैं आपके साथ में रहकर आपकी रक्षा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। मैं आगे चलूंगा, सीता देवी मेरे पीछे चलेंगी और आप उनके पीछे चलिए। जब रात को आप विश्राम करेंगे, सो जाएंगे, तो आप दोनों आराम से सो जाइए, मैं खड़े होकर रक्षा करूंगा। वैसे आपको सुनकर ये जानकर आश्चर्य होगा कि लक्ष्मण 14 वर्ष सोए नहीं, हर रात वो राम और सीता की रक्षा के लिए पहरेदारी करते रहे। जब अयोध्या से लौटकर आए श्री रामचंद्र विजयी होकर तो एक बार लक्ष्मण जी भी दरबार में बैठे थे, राज्याभिषेक इत्यादि सब हो गया था, और लक्ष्मण के मुख में जमाई देखकर किसी ने कहा कि ऐसे कैसे है, ये तो मर्यादा के विरुद्ध है, दरबार में बैठे हुए ये भाई कर रहे हैं। तो श्री राम ने कहा कि नहीं नहीं, आपको जानना चाहिए कि 14 साल तक लक्ष्मण सोए नहीं है, अभी नींद आ रही है। तो उसके बाद शायद लक्ष्मण थोड़े विश्राम करने के लिए गए होंगे। तो 14 वर्ष श्री लक्ष्मण जी ने श्री राम और सीता की सेवा की, रात को बिल्कुल सोए नहीं। यह है लक्ष्मण की सेवा श्री राम के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति। ऐसे जितने भी संबंध है यहां पर, ये आदर्श है मनुष्य जीवन में। ऐसे संबंध आजकल तो नहीं दिखाई पड़ते, ना ही इस कलयुग में ऐसी चीजें संभव हैं। तो लक्ष्मण जी की सेवा कैसी थी वो हम समझ सकते हैं। फिर श्री राम अब तैयार हुए और चल के फिर सारे ब्राह्मणों को उन्होंने बुलवाया। ब्राह्मणों को बुलवा के दान में देना शुरू कर दिया, जो भी उनके पास संपत्ति थी, अपने अच्छे अच्छे वस्त्र थे, आभूषण आदि गहने आदि थे, गाय थी, वो सब दान में दे दिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खाली हाथ लौटा। श्री राम बड़े उदार थे, तो जो भी उनके पास था वो सब दे डाला उन्होंने, संकोच नहीं किया। सोचा नहीं कि थोड़ा कुछ लौटने के लिए जब मैं आऊंगा तब के लिए कुछ रखना चाहिए, नहीं, सब कुछ दे दिया। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था त्रिजटा, बहुत गरीब थे और गरीबी के कारण पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं मिलता था उनको। तो पत्नी ने उनको भेजा, श्री राम के पास जाओ, कुछ तो दान में ले आओ। जैसे सुदामा की पत्नी ने सुदामा जी को भेजा था कृष्ण के पास, हम इतने गरीब हैं, थोड़ा कुछ तो ले आओ अपने मित्र से। तो ये त्रिजटा भी आए थे, पहुंच गए उसी समय जबकि श्री राम ऐसे दान कर रहे थे सबको। तो पहुंचे तो श्री राम ने सोचा कि थोड़े हल्के भाव में थे, थोड़ा मजाक करना चाहा। ये इतने दुबले पतले बेचारे कमजोर ब्राह्मण थे, तो श्री रामचंद्र ने उनसे कहा कि ठीक है, आप बहुत बलवान दिख रहे हो, कि आप ये दंड ले लो और जितने दूर आप इस दंड को फेंकोगे, उस वो दंड जहां गिरेगा वहां तक यहां जितना भी धन है वो आपको मिल जाएगा, हम आपको दान में दे देंगे। तो अपने कमर बंद को फिर ठीक से मजबूत कर लिया और अपनी धोती को उठा ली, और फिर उस ब्राह्मण ने वो दंड हाथ में लिया, घुमाया और अपने सारे शक्ति से उसे दूर फेंका। अब सारे लोग जो खड़े थे बहुत आश्चर्यचकित हो गए ये देखकर कि ये कमजोर दुर्बल ब्राह्मण ने ऐसे छड़ी या वो दंड को फेंक दिया कि वो सरयू नदी को पार करके भी, अनेक हजारों गाय वहां चर रही थी उनको पार करके उस पार गिर गया। तो भगवान श्री राम ने कहा, मैं तो केवल आपके ब्रह्म तेज को देखना चाहता था, अपराध ऐसे मानना नहीं, मेरी कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। लेकिन मैं सबको दिखलाना चाहता था कि ब्राह्मण की शक्ति कितनी होती है। और जितने भी गाय वहां हैं सरयू नदी और वहां जबकि जहां की तुम्हारा दंड गिर पड़ा है, वो सारे गाय तुम्हें मैं दान में देता हूं। तो फिर वो ब्राह्मण जो हजारों गाय दान में लेकर चले गए। तो ऐसे श्री राम दान दे रहे थे और देते देते फिर उन्होंने सोचा कि अभी दशरथ महाराज के राजमहल में जाना चाहिए, उनकी अनुमति लेनी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि अब रथ पे जाना ठीक नहीं, पैदल जाएंगे। तो सीता राम लक्ष्मण तीनों पैदल सड़क के ऊपर से जा रहे थे। वहां प्रजा के सदस्य इकट्ठे हुए थे सड़कों पर, बहुत शोकग्रस्त अवस्था में रो रहे थे सभी, हृदय को छूने वाली अवस्था थी। और उनमें से लोग कह रहे थे, धिक्कार रहे थे दशरथ महाराज को, कैकेयी देवी को, कोई अपने ही भाग्य को कोस रहे थे। और कोई कहने लगे, आज वो सीता देवी जिसको किसी ने सड़क पे आज तक नहीं देखा, वो आज सड़क पे चल रही है, सड़क पे दिखाई पड़ रही हैं। दूसरे शब्दों में, जो राजकुमारियां होती थी या महारानियां होती थी, वो सड़क पे कभी ऐसे खुलेआम नहीं आती थी। आती भी थी तो किसी पालकी में या हाथी के ऊपर, वो भी पर्दे आदि रहा करते थे। तो वहां की सभ्यता, वैदिक सभ्यता उस समय की ऐसी हुआ करती थी। तो ये शोक करने लगे कि आज सीता देवी की ये दशा है कि वो सबके सामने सड़क पे चल रही हैं। तो खैर वो पहुंच गए तीनों दशरथ महाराज के सामने। दशरथ महाराज से श्री राम ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हे पिताजी, आप मुझे आदेश दीजिए, अनुमति दीजिए, मैं अब वन के लिए निकलना चाहता हूं। दशरथ महाराज फूट फूट के रो रहे थे, कहने लगे कि मैं तुम्हें कोई सलाह देना चाहता हूं, मेरी बात मानो। मेरी सलाह ये है, मुझे तुम गिरफ्तार कर लो और बलपूर्वक तुम राज सिंहासन पर बैठ जाओ, मेरी बात मानो, ऐसे करो। परंतु श्री राम ने बात नहीं मानी। कैसे मानते? उन्होंने कहा कि ये तो मैं नहीं कर सकता, धर्म के पथ से मैं बिल्कुल अलग से नहीं हट सकता, इसलिए मुझे इसी समय जाना होगा। आप मुझसे कह रहे हैं कि एक दिन और मुझे यहां रहना होगा, लेकिन ये भी संभव नहीं है, तुरंत मुझे यहां से निकल जाना होगा। सुमंत्र दशरथ महाराज के प्रधानमंत्री थे। समस्त मंत्रियों में से सुमंत्र सबके निकट के एक संबंधी थे दशरथ महाराज के। बहुत ही गहरा प्रेम का संबंध था सुमंत्र का दशरथ महाराज और उनके परिवार से। तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे, कैकेयी देवी को धिक्कारने लगे, कहने लगे कि आप किस तरह की महिला हैं, अभी आपके कारण आपके पति की मृत्यु होने वाली है, क्या आप समझते हो कि आपके कार्य का परिणाम क्या होगा? श्री राम के साथ राज्य के सारे ब्राह्मण चले जाएंगे, अयोध्या में कोई भी ब्राह्मण नहीं रहेंगे, तो फिर यहां मंगल कैसे होगा राज्य में? अमंगल वातावरण में आप यहां अकेली रहोगी अपने बेटे दशरथ के साथ में? मैं आपको एक गुही बात सुनाना चाहता हूं जो कि आपके पिता से संबंधित है। कैकेयी कैकेयी राज्य से थी, इसलिए नाम हुआ कैकेयी। तो कैकेयी राजा का नाम था अश्वपति। तो सुमंत्र कहने लगे कि एक बार आपके पिता महाराज अश्वपति को एक वरदान मिला था एक ऋषि के द्वारा, और ये एक बड़ा विचित्र प्रकार का वरदान था। वरदान क्या था कि हे राजन, आप समस्त प्रकार के भाषाओं को समझेंगे, न केवल मनुष्यों की भाषाएं, परंतु जो पक्षियों की भाषाएं हैं, पशुओं की भाषाएं हैं, यहां तक कि जो भंवर आदि की भाषा है वो भी आप समझ जाएंगे। परंतु एक शर्त है, जब आप पशुओं की भाषा समझोगे, पक्षियों की भाषा समझोगे, यदि आपने किसी को इनका अर्थ बता दिया तो फिर आपकी मृत्यु हो गई। तो एक बार ऐसे हुआ, सुमंत्र कहने लगे कैकेयी से कि आपके पिता की रानी के साथ कहीं एक बार टहल रहे थे उद्यान में, वहां एक पक्षी कुछ बोली, पक्षी अब कुछ बोल रही थी अपनी भाषा में, तो समझ गए राजा अश्वपति, हंसने लगे क्योंकि बात ही कुछ ऐसी कही थी उस पक्षी ने। तो हंसने लगे तो रानी को थोड़ा विचित्र लगा, रानी ने सोचा कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं, तो राजा से कहने लगे बताइए कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो राजा ने कहा कि मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? कहा कि देखो ऐसे ऐसे बात है, मैंने उस पक्षी की आवाज सुनी, उसकी भाषा में समझ गया और उसने एक ऐसी बात कही जिसके कारण मैं हंस पड़ा, और ऋषि ने ये मुझे वरदान देते समय शर्त रखा था कि यदि मैं किसी को बतलाऊं कि मैंने क्या समझ लिया है तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। उस समय महारानी ने कहा आप जीवित रहें या आप मर जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन आपने क्या सुना उस पक्षी से मुझे आपको बताना ही पड़ेगा। तो बड़े दुविधा में पड़ गए राजा, अभी क्या करेंगे। तो गए उस ऋषि के पास वापस कि ऐसे ऐसे समस्या है क्या करें। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं बताना, बल्कि अपने पत्नी अपनी महारानी के पास जाके उसके घमंड के लिए उसे दंड देना, डांट देना। तो वैसे ही किया राजा अश्वपति ने, आके अपने पति अपने पत्नी को अपने महारानी को बहुत डांट दिया, और फिर सुमंत्र कहने लगे, उसके बाद सब ठीक ठाक हो गया। तो आपको भी ऐसे हैरान नहीं करना चाहिए, जैसे आपकी माता ने आपके पिता को हैरान किया था, वैसे आपको अपने पति को हैरान ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन कैकेयी कहां सुनने के लिए तैयार थे, कैकेयी ने बात नहीं मानी, कैकेयी अपने इच्छा पे डटी रही, बहुत दृढ़ संकल्प था कैकेयी का कि अब मैं मेरे निश्चय से हटने वाली नहीं हूं, राम को जाना ही होगा वन में, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। फिर बड़े भारी हृदय से जब दशरथ महाराज थोड़े बहुत होश में थे, थोड़े बहुत बोलने की दशा में थे, तो उन्होंने सुमंत्र से कहा कि अब रथ की तैयारी करो, और रथ के साथ साथ बहुत एक अक्षौहिणी वर्ग सैनिकों की वो भी तैयार करो, साथ साथ में बहुत सारे वैश्य जो हैं, व्यापार करने वाले लोग, हमारे राज्य के खजांची हैं, वो भी सब जाने चाहिए राम के साथ, ताकि राम जहां भी जाए वन में बड़े आराम से रहे। तो यह राज्य की संपत्ति साथ में ले जाए थोड़ा बहुत। तो कैकेयी देवी घबरा गई, घबरा कर बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बड़ा अन्याय होगा भरत के प्रति, क्या भरत एक ऐसे राज्य को स्वीकार करेगा जिसमें कोई संपत्ति रह ही नहीं गई है, आप सारी संपत्ति राम के साथ भेज दोगे तो भरत के पास रहेगा क्या। तो महाराज दशरथ को बहुत क्रोध आया, कह रहे दुष्टा तुम नहीं समझती हो, तुमने तो ऐसे वरदान मांगते समय नहीं मांगा था कि श्री राम के साथ कोई जाना नहीं चाहिए, तुमने जो दो वरदान मांगे थे मैंने पूर्ण कर दिए, अब यदि राम को ऐसे अवस्था में जाना है तो अब क्या खेद है, तुम क्यों विरोध कर रही हो। तो कैकेयी कहने लगी कि देखिए आपके वंशजों का उदाहरण देखिए, आपके पूर्वजों का, महाराज सगर जिनका वर्णन हम कर चुके हैं, आपको याद होगा जब गंगा जी के आविर्भाव या प्राकट्य की लीला का वर्णन हम कर रहे थे तो महाराज सगर की बात हमने की थी, और जब सगर का विषय आए तो ये जान लीजिए कि सगर शब्द से आता है सागर, तो सगर महाराज के कारण सागर भी हुआ। तो खैर, तो कैकेयी देवी ने कहा कि सगर महाराज ने अपने पुत्र असमंजस को वनवास में भेज दिया। उस समय साथ में कोई धन आदि नहीं दिया, उनके साथ में कोई गए नहीं। उधर जब कैकेयी देवी ऐसी बोल रही थी तो महाराज दशरथ के एक वृद्ध मंत्री थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। उन्होंने ये सुना, वो बहुत विचलित हो गए। तुरंत महारानी कैकेयी से कहने लगे, आप क्या कह रहे हैं? क्या आप श्री राम की तुलना असमंजस से कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं कि असमंजस क्या करता था? वो अपने मित्रों को मार डालता था, नदी में उनको डुबा डालता था, बच्चों की हत्या करता था। वो तो बहुत दुष्ट था, पापी था। इसलिए महाराज सगर को और कोई उपाय रहा नहीं, वनवास में भेजना पड़ा। लेकिन राम में आप क्या दोष देख रही हो? कौन सा बड़ा पाप या छोटा पाप भी किया है श्री राम ने? राम तो इतने धर्म परायण है, आपके प्रति भी क्या दोष है, क्या गलत किया है राम ने? तो कैसे आप राम की तुलना असमंजस से कर रहे हो? लेकिन कैकेयी मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो फिर दशरथ महाराज हैरान होकर कहने लगे कि ठीक है, तो मैं श्री राम के साथ में जाऊंगा और तुम यहां अकेली रह जाना। वैसे भी अयोध्या की प्रजा श्री राम के साथ जाने के लिए तैयार है, और मैं श्री राम के साथ में जाऊंगा और तुम यहां भरत के साथ में रह के अकेले इस खाली राज्य का भोग करो। उस समय श्री राम ने अपने पिता को रोक दिया कि नहीं नहीं पिताजी, ऐसे आप बात नहीं करना, आपको भी सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। आपने जो वचन दिया है माता कैकेयी को, उसे पूर्ण करना चाहिए आपको। इसलिए आप बिल्कुल दुखी नहीं होइए, मैं शीघ्र ही लौट के आऊंगा। 14 साल कैसे बीतेंगे हमें पता नहीं चलता, शीघ्र ही मैं आऊंगा आपकी सेवा में। आप यहां रहिए बड़े आराम से। तो भारी हृदय से दशरथ महाराज आगे कुछ बोल नहीं पाए। उधर वनवास के लिए जो उपयुक्त वस्त्र हैं वो लाए गए। आपको पता है कि उन दिनों में जब ऋषि मुनिगण वन में रहते थे तो किस तरह का पोशाक पहनते थे, उसको वल्कल कहते हैं। जो पेड़ों के छाल होते हैं, पेड़ों का छाल निकाला जाता था, फिर वो बांधा जाता था शरीर के ऊपर। तो राम ने पहन लिया, लक्ष्मण ने भी पहन लिया। सीता देवी जब पहनने जा रही थी तो पहन नहीं पाई, क्योंकि पहले कभी ऐसे वस्त्र पहनने की आदत नहीं थी। तो ऐसे देखकर वशिष्ठ मुनि बहुत दुखी हो गए, बहुत कोसने लगे भाग्य को, और साथ साथ में कैकेयी देवी को भी डांटने लगे कि देखो सीता की क्या गलती है, आज हमें सबको ऐसे दिन देखना पड़ रहा है कि सीता देवी को भी ऐसे वस्त्र ये वल्कल आदि धारण करने पड़ रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, कितनी शर्म की बात है। फिर आगे खैर जितने भी महल के निवासी थे वो सब अपने हृदय से कैकेयी को और दशरथ महाराज को धिक्कारने लगे। जब दशरथ महाराज ने इन बातों को सुना तो बिल्कुल जीने के लिए इच्छा उनकी नहीं रही कि अब प्राण शरीर में रखने से क्या लाभ, ऐसे दिन मुझे दिखने पड़ रहा है जब मेरे कारण मेरा पुत्र वनवास में जा रहा है, मैं मेरे पुत्रों से अलग पुत्र से अलग हो जाऊंगा और मेरी प्रजा और मेरे महल के निवासी भी इस प्रकार से मुझे धिक्कार रहे हैं। आज मुझे ऐसा दिन दिखाई को दिखना पड़ रहा है, कितना दुर्भाग्य है मेरा। तो राजा दशरथ ऐसे शोक करते गए। कौशल्या देवी ने उधर सीता देवी को बुलवाया और सबके सामने अच्छे उपदेश देना शुरू किया कि पत्नी के कर्तव्य कैसे होने चाहिए, कि देखो सीते, इस दुनिया में ऐसे कई स्त्रियां हैं जो थोड़ी बहुत कठिनाई होने पर अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, परंतु तुम उनमें से नहीं होना। और ऐसे पत्नी धर्म स्त्री धर्म की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से कौशल्या देवी करने लगी और कहा कि श्री राम का साथ कभी छोड़ना नहीं। सीता देवी ने पूरी तरह से आश्वासन दिया कौशल्या देवी को, और वैसे भी सीता देवी आदर्श पत्नी थी, उसमें कोई संशय नहीं था। और फिर सीता, राम, लक्ष्मण तीनों ही महल के बाहर आए, और जब महल में से बाहर आए तो सुमंत्र ने रथ तैयार किया था, रथ के ऊपर सवार हुए और रथ चल पड़ा। रथ के पीछे पीछे अयोध्या की प्रजा चलती जा रही थी और सुमंत्र से कह रहे थे, धीरे चलाओ धीरे चलाओ, हम भी साथ में आना चाहते हैं। दशरथ महाराज से रहा नहीं गया, वो भी अपने महल से बाहर आए और जैसे रथ आगे चल रहा था दौड़ते दौड़ते हे राम कह के पीछा कर रहे थे श्री राम का। सुमंत्र ने पीछे देखा कि कैसी अवस्था है, रुक गए। श्री राम ने कहा, आगे चलो। दशरथ महाराज पीछे से कह रहे थे, रुक जाओ, किनके आदेश का पालन करना है, सुमंत्र नहीं समझ पाए। फिर थोड़े कटु वचन बोलने पड़े श्री राम को सुमंत्र को, कहने लगे कि और मेरा दुख बढ़ाओ नहीं, जल्दी से अभी रथ को आगे बढ़ाओ। तो फिर सुमंत्र ने बात मान ली। उधर दशरथ महाराज सड़क पर ही गिर पड़े, बेहोश हो गए, और उनको उठाने के लिए कौशल्या देवी और कैकेयी देवी दोनों सामने आई। जैसे ही दशरथ महाराज ने कैकेयी देवी को देखा तो भर्त्सना करने लगे कि हे दुष्टा, दूर हो जाओ हमसे, मुझे छुओ नहीं, मेरे पास में नहीं आओ। उधर श्री राम रथ के ऊपर थे, थोड़े वृद्ध ब्राह्मण पीछे पीछे आ रहे थे, अपने बुढ़ापे के कारण वो तेज गति से चल नहीं पा रहे थे। उन्होंने उनकी कठिनाई को देखकर श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि हे सुमंत्र, अब रथ को रोक दीजिए, हम नीचे उतरेंगे और हम पैदल चलेंगे। और फिर रथ से उतर के वो पैदल चलने लगे और सारी प्रजा अयोध्या की उनके पीछे पीछे आती रही। और चलते चलते तमसा नदी के तट पर पहुंचे, वहां रात के लिए विश्राम करने की तैयारी की। तो लक्ष्मण वहां पर राम के साथ पे रहे रात भर, सीता देवी के लिए सोने की व्यवस्था की लक्ष्मण ने, राम के लिए भी की, लेकिन राम सोए नहीं। राम और लक्ष्मण रात भर बात करते रहे। राम ने आखिरी बार प्रयास किया लक्ष्मण को वापस भेजने के लिए, लेकिन लक्ष्मण ने एक नहीं मानी राम की बात। फिर रात बीत गया। उधर श्री राम चिंतित थे कि अयोध्या की सारी प्रजा मेरे साथ में आई है, अब ये तो उचित नहीं है कि ये सब मेरे साथ में चलें। जो भाव है इस आदेश का कि मुझे वनवास में जाना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। केवल वन में जाके यदि हम राजमहल के ऐश्वर्य को, सुख को साथ में ले जाएं, तो ये कोई मायने नहीं रखता। साथ साथ में प्रजा का प्रेम भी साथ में ले जाएं, प्रजा भी हमारे साथ में आए, तो ये भी ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने सुमंत्र से कहा, रात सुबह को बहुत जल्दी उठे, सुमंत्र को जगाया और कहने लगे कि हे सुमंत्र, आप ऐसे कीजिए, रथ पर बैठिए और इस रास्ते से जाइए ताकि लोगों को लगे कि हम लोग इस रास्ते से गए हैं, फिर दूसरे रास्ते से लौटकर यहां आइए और हम तीसरे रास्ते से यहां से निकल जाएंगे। प्रजा को पथ भ्रष्ट करना था, गुमराह करना था उनको। तो बड़े भारी हृदय से सुमंत्र ने इस आदेश का पालन किया। और जब सुबह को प्रजा जागी, वहां सब लोग वहां तमसा नदी के तट पर सो गए, और उनके उठने से पहले, जागने के पहले ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता रथ के ऊपर बैठ के चले गए, निकल पड़े। जब प्रजा जाग गई, सबने देखा कि श्री राम नहीं है, हाहाकार मच गया वहां पे। शोकग्रस्त अवस्था में सभी लोग भारी हृदय के साथ चल पड़े वापस अयोध्या की ओर। और वहां जब पहुंचे तो जितने भी महिलाएं बच्चे वहां थी, सब धिक्कारने लगे उनको कि आप क्यों आए ऐसे खाली हाथ, श्री राम को लेकर नहीं आए। और सारे अयोध्या में माहौल सब जगह उदास हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो जिसके चेहरे पे कोई मुस्कान दिखाई पड़ रही थी। सभी लोग अत्यंत दुख का अनुभव कर रहे थे। उधर जैसे राम आगे बढ़ते जा रहे थे, अनेक स्थानों से गुजरते हुए गए तो सब जगह उन्होंने सुनी बातें लोगों की। दशरथ महाराज और कैकेयी को धिक्कार रहे थे सभी लोग, भला बुरा कहते जा रहे थे। श्री राम को अच्छा नहीं लगा, पर खैर क्या करते। फिर वेद श्रुति गोमती और शंडिका नदियों को पार कर दिया। इन तीन नदियों को पार करने के बाद कौशल राज्य के सीमा पर पहुंचे। और इस समय पीछे मुड़कर हाथ जोड़कर अपने अयोध्या नगरी की ओर देखा। श्री राम ने अनुमति ली कि अब हमें यहां से निकलना होगा। फिर वो पहुंचे गंगा के तट पर। वहां पे एक निषादों के राजा रहा करते थे अपने निषाद प्रजा के साथ, जिनका नाम था गुह। ये गुह भी महाराज दशरथ के अधीन थे, एक राजा थे, निषादों के राजा थे। राम से बहुत प्रेम करते थे, राम के भक्त थे वो। उनकी कानों तक भी खबर तो पहुंच ही गई थी कि राम वनवास में निकल पड़े हैं। तो राम का स्वागत किया और उन्होंने उनके लिए बहुत अच्छी दावत की व्यवस्था की थी। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे, वन में भी उन्होंने ऐसे व्यवस्था कर दी। लेकिन श्री राम ने गुह से कहा, आपने जो भी कुछ मुझे अर्पण किया है इस समय, मैं मेरे हृदय से स्वीकार करता हूं, परंतु मेरे शरीर से नहीं स्वीकार कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे जीवन शैली अपनानी होगी जो कि एक वन में रहने वाले मुनि के लिए उपयुक्त है और उचित है। तो हमें केवल आप साधारण यहां के कंदमूल फल आदि प्रदान दे दीजिए, हम उससे संतुष्ट रहेंगे, और ये बाकी जो भोजन है ये हमारे घोड़ों को आप खिलाइए। तो गुह ने ऐसे ही किया। फिर लक्ष्मण ने पेड़ के पन्नों से, पत्तों से एक कोमल शैया तैयार किया राम और सीता के रात के शयन के लिए। सीता और राम वहां सो गए और गुह लक्ष्मण के साथ में रात भर चर्चा करते रहे, श्री राम का गुणगान करते रहे। बहुत भाव विभोर अवस्था में लक्ष्मण शोक कर रहे थे और गुह ने इन सारी बातों को सुन ली, उनका भी दिल भर गया। खैर क्या करते, सुबह हुई तो राम के इच्छा के अनुसार गुह ने व्यवस्था कर दी नौकों की गंगा पार करने के लिए। और श्री राम ने गुह से भी जो वृक्षों के जो थोड़े पदार्थ होते हैं, जो कि मुनिजन वन में रहते हुए अपने बालों को लगाते हैं, जटाओं में फिर बांध देते हैं बालों को, वो उन्होंने कर लिया। अब जटायुक्त श्री राम हो गए, अब सुमंत्र इसको देख नहीं पाए। इस समय श्री राम ने सुमंत्र को वापस भेजा कि हे सुमंत्र, कृपया आप अब वापस लौट जाइए अयोध्या, क्योंकि वहां कैकेयी देवी माता कैकेयी बहुत चिंतित होंगी कि क्या मैं वास्तव में चले गया या कोई मैं वापस आने की मेरी कोई संभावना है, तो इसलिए आप तुरंत जाइए और कैकेयी माता को खबर दीजिए, साथ साथ मेरे पिता दशरथ महाराज को सांत्वना दीजिए और उनसे कहिए मेरी ओर से एक संदेश है। और संदेश ये है कि हे पिताजी, आप के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है, आप कृपया शोक मत करिए, हमारी माताओं का ख्याल रखिए, प्रजा का ख्याल रखिए, और मैं शीघ्र ही आपके पास लौट के आऊंगा। 14 वर्ष बहुत जल्दी बीत जाएंगे। तो सुमंत्र वहां से निकल पड़े और इधर आगे लक्ष्मण, सीता देवी और श्री राम आगे बढ़ते गए। लक्ष्मण सबसे पहले चलते, पीछे सीता देवी और उनके पीछे श्री राम। लक्ष्मण ने सीता देवी को अपने मां के रूप में देखा और उस समय के सभ्यता के अनुसार कभी भी श्री लक्ष्मण जी सीता देवी के मुख का दर्शन भी नहीं करते थे। बाद में बहुत एक घटना आती है जब रावण सीता देवी का अपहरण कर लेते हैं और सीता देवी आकाश पथ से चलते हुए अपने थोड़े गहने नीचे फेंक देती हैं, तो उनको ढूंढते ढूंढते जब श्री राम और लक्ष्मण वहां पहुंच जाते हैं और अचानक उनको ये गहने मिल जाते हैं, तो फिर श्री राम पूछते हैं लक्ष्मण से कि क्या आप पहचानते हो इनको। तो श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं पहचानता, केवल जो सीता देवी के चरण कमलों के आभूषण हैं, जो अंगूठी है, केवल वो मैं पहचानता हूं, क्योंकि मैंने उनका मुख भी नहीं देखा है, तो कैसे क्या गहने आभूषण हैं मुझे नहीं पता। तो लक्ष्मण जी का भाव ऐसे था, सेवा इस तरह से करते थे। तो आगे चलते चलते अपने धनुष बाण को हमेशा तैयार रखते थे कि कहीं कोई खतरा न हो, और पीछे श्री राम सीता देवी को सारे वन में जितने भी वृक्ष थे आदि उनका ज्ञान देते रहते। सीता देवी पूछती, ये वृक्ष कौन सा है, ये फल कौन सा, ये फूल कौन सा है, ये लता कौन सी है, तो राम सारा ज्ञान देते रहते कि ये वृक्ष ऐसा है, इसके लक्षण ऐसे होते हैं, इसके गुण ऐसे होते हैं। आजकल देखिए समस्या ऐसी है, पेड़ों के नाम नहीं जानते। आजकल शहरों में बच्चों को पूछिए कि दूध कहाँ से आता है, वो कहेंगे पॉलीथीन के बैग से आता है दूध। शहर के बच्चे ये भी नहीं जानते कि गाय से दूध आता है। तो आजकल लोगों को बिल्कुल पता नहीं, हम निसर्ग से, प्रकृति से इतने हट गए हैं, शहरी जीवन, इस रजोगुणी जीवन से इतने आसक्त हो गए हैं, यहाँ के जो शोर से, यहाँ जो हल्ला है, उसे इतने आसक्त हो गए हैं, आदि हो गए हैं, कि शांत ठिकाने, शांत स्थान में जाएंगे तो वहां अच्छा नहीं लगता, चैन नहीं लगती है। एक व्यक्ति हमें कह रहे थे कि उनका घर रेल की पटरी के बिल्कुल लगता हुआ है, बिल्कुल पास में है, और रेलगाड़ियों की आवाज दिन भर रात भर चलती रहती है और इसकी आदत हो गई है उनको। तो वो कहने लगे कि जब मैं ऐसी दूसरी जगह में जाता हूं तो रात को सो नहीं पाता हूं, क्योंकि रेलगाड़ी की आवाज नहीं आती है। तो यहां ऐसे शहरी वातावरण में रहते हुए ये समस्याएं हो जाती हैं। बिल्कुल निसर्ग से, प्रकृति से इतने हम दूर निकल गए हैं, हमारी जीवन शैली इतनी कृत्रिम हो गई है, आर्टिफिशियल हो गई है, कि हमें पता ही नहीं है कि ये दुनिया कैसे चल रही है, भगवान ने कैसी सुंदर व्यवस्था की है सारे प्रजा के पालन के लिए, मनुष्यों के लिए भी। तो खैर, उस दिव्य सौंदर्य को देखते हुए श्री राम लक्ष्मण के साथ चल रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रकृति का सौंदर्य देख के कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रभावित नहीं होगा, परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह प्रकृति का सौंदर्य वैकुंठ जगत के सौंदर्य का प्रतिबिंब मात्र है, भगवान के सौंदर्य का एक प्रतिबिंब है। यदि प्रतिबिंब इतना सुंदर है तो भगवान कितने सुंदर होंगे, उनका धाम, उनका वैकुंठ जगत कितना सुंदर होगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। तो खैर, सीता देवी को समझाते समझाते ऐसे उनका मनोरंजन होता था, समय बीतता था, और आगे चलते चलते फिर जब वो गंगा पार करते समय भी सीता देवी ने गंगा देवी से प्रार्थना की कि कृपया ऐसे कृपा करें हमारे ऊपर कि हम तीनों सुरक्षित अयोध्या पहुंच पाए 14 वर्षों के बाद। फिर गंगा पार करने के बाद में वो एक आश्रम में पहुंचे, वहां गंगा और यमुना का संगम था, वहां पे भरद्वाज ऋषि का आश्रम था। भरद्वाज ऋषि के शिष्यों ने उनको देखा, स्वागत किया, स्वयं भरद्वाज ऋषि आए, बहुत मीठे शब्दों से स्वागत करके उनको आसन ग्रहण कराया और फिर कहने लगे कि हे राम, मैं आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा था, मैं राह देख रहा था कि कब श्री राम मेरे आश्रम में पधारेंगे, मुझे पता था कि क्या होना है, तो मेरा निवेदन ये है कि कृपया आप तीनों यहां मेरे आश्रम में 14 वर्ष निवास करो, बहुत रमणीय स्थान है और मेरे शिष्य हैं अनेक यहां पर, ये आप तीनों की सेवा करेंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी। तो श्री राम कहने लगे, हम बहुत आभारी हैं आपके कि आपने ऐसी हमारे ऊपर कृपा की, परंतु समस्या यहां पर यह है कि यह स्थान अयोध्या से बहुत निकट है, जैसे ही अयोध्या के निवासियों को पता चलेगा कि मैं यहां पर हूं, वो यहां पर चले आएंगे, इसलिए यहां से मुझे निकलना होगा। तो फिर आप बताइए कि मैं कहां रहूं, ऐसा कौन सा उचित उपयुक्त स्थान है मेरे लिए। तो फिर भरद्वाज ऋषि ने कहा कि यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर, किलोमीटर नहीं, उस समय योजनाओं में बात की थी, हम आपको किलोमीटर में बता रहे हैं, यहां से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर एक बहुत रमणीय सुंदर स्थान है, उस स्थान का नाम है चित्रकूट, वहां जाके आप रहना और आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो बड़े प्रसन्न हुए इस सुझाव को सुनकर श्री राम, और सीता देवी और लक्ष्मण जी को साथ मिलकर चले गए। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि जैसे ही वहां पे यमुना नदी आएगी, यमुना नदी पार कर लेना, पार करने के बाद वहां पे श्याम नाम का एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है, फिर वहां पहुंच के तुम जान जाओगे कि चित्रकूट कहां है, बहुत निकट है वहां। तो फिर आगे चलते गए और यमुना पार करने के लिए लक्ष्मण ने एक छोटी सी नौका तैयार कर ली। लक्ष्मण हर चीज में दक्ष थे, नौका भी तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और उस बरगद वृक्ष के पास पहुंच गए, वहां आके चित्रकूट पहुंचे पहली बार। तो आप देखेंगे, आप में से अनेक भक्त भी चित्रकूट गए होंगे, वहां कामतगिरी पर्वत है और अनेक ऐसे महत्वपूर्ण श्री राम की लीलाओं की स्थलियां हैं, सीता देवी से संबंधित अनेक स्थान हैं, उनके चरण चिन्ह भी हैं सीता देवी के, वहां पर बहुत सुंदर स्थान है। तो खैर, वहां चित्रकूट में आप पहुंचे और वहां पे वाल्मीकि मुनि का आश्रम था, वाल्मीकि मुनि ने उनका स्वागत किया और कहा कि आप यहां पर निवास करना, यहां खुली जगह है, जहां भी आपको चाहे आप चाहो वहां पे रह सकते हो। तो लक्ष्मण ने वहां एक बहुत सुंदर कुटिया बनाई श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को रहने के लिए, और फिर बड़े आराम से राम, सीता और लक्ष्मण फिर उस स्थान में रहने लगे। उधर सुमंत्र वहां से निकल पड़े थे, लेकिन इसके पहले कि वो निकले वहां से, गुह ने पीछे पीछे थोड़े जासूसों को भेजा था कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण कहां तक पहुंचे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, गंगा के तट में पहुंचे हैं, तब उन्होंने खबर दे दी सुमंत्र को, सुमंत्र फिर वहां से निकल पड़े और अयोध्या आ पहुंचे। जैसे जैसे अयोध्या आए तो सब जगह जैसे ही लोग उनको देखते, उनसे पूछते कि कहां है राम, कहां है राम। और बड़े भारी हृदय से उनको जवाब देते। फिर दशरथ महाराज के पास में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सारा शहर जो है वो खाली खाली सा है, वहां पर कोई भी व्यक्ति अपना निहित कार्य नहीं कर रहा है। ब्राह्मणों के निहित कार्य क्या होते हैं? वेदों का पठन करना, पठन पाठन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह। तो ब्राह्मण यज्ञ नहीं कर रहे थे, न ही वो वेदों का पाठ कर रहे थे, न वो किसी से दान स्वीकार कर रहे थे। उधर जो वैश्य हैं वो भी अपना व्यापार नहीं कर रहे थे, सारे दुकान आदि बंद पड़े थे। जो आश्रम है ब्राह्मण, जो ब्रह्मचारी हैं, वो भी अपनी तपस्या पठन आदि नहीं कर रहे थे। गृहस्थ लोग हैं वो आपस में अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभाल रहे थे। माताएं अपने पुत्रों को देखकर प्रसन्न नहीं होती थीं, अपने बच्चों का देखभाल गृहस्थ नहीं कर रहे थे, बल्कि लोग खा भी नहीं रहे थे, पी भी नहीं रहे थे, सो नहीं पा रहे थे। ऐसा वातावरण था अयोध्या में, जो कि सुमंत्र ने देखा जबकि वो लौटकर आए। ऐसी दशा कि सुमंत्र का हृदय टूट गया। चारों वर्ण, चारों आश्रम के लोग अपने अपने कर्तव्यों को का पालन नहीं कर रहे थे। सबका हृदय इतना टूट गया था कि वो सोच रहे थे कि अभी जीने से भी क्या मतलब, जब हमारे जीवन से श्री राम ही चले गए हैं। ऐसा प्रेम उनके हृदय में श्री राम के प्रति था। फिर वो दशरथ महाराज और कैकेयी देवी के सामने आए। कैकेयी देवी को सबसे पहले उन्होंने बताया कि हाँ, श्री राम निकल पड़े हैं, वहां पे अब गंगा के तट पे हैं और आगे बढ़ गए हैं। दशरथ महाराज ने खबर पूछी। दशरथ महाराज को बताया उन्होंने कि आप चिंता नहीं कीजिए, राम ने ऐसे ऐसे संदेश आपके लिए भेजा है। और फिर उनकी यात्रा कैसे हुई उसका वर्णन भी सुमंत्र ने किया। महाराज दशरथ और भी बहुत शोक करने लगे, और शोक करते करते कौसल्या माता भी वहां पर आई। कौसल्या माता जी कटु वचन कहने लगी महाराज दशरथ से, ये सब आपके दुर्बलता के कारण है। फिर वो भी समझ गई कि महाराज दशरथ को भी कितना दुख हो रहा है, अपने आप को संभाल गई, संभाल पाई। और फिर दशरथ महाराज कौशल्या देवी से कहने लगे कि मुझे पता है कि इसका कारण क्या है। बहुत साल पहले की बात है कि मैं शिकार करने गया था वन में, मुझे एक विशेष शक्ति मिली थी, एक वरदान मिला था मुझे कि केवल ध्वनि मात्र से मैं एक पशु को पहचान सकता हूं, और बिना देखे हुए मैं तीर छोड़ता हूं और तीर सीधे निशाने पर जाती है। मुझे सही निशानी पर तीर छोड़ने के लिए उस निशाने को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल सुनने से ही मैं तीर छोड़ सकता हूं। तो खैर, जब मैं वन में गया था तो मैंने थोड़ी आवाज सुनी, मैंने सोचा कि वो एक कोई पशु होगा, कोई हरिण होगा, तो मैंने तीर छोड़ दी और तुरंत मुझे एक मनुष्य की चीख की आवाज सुनाई पड़ी। मैं बहुत भयभीत हो गया कि अरे हाय हाय, मैंने तो किसी व्यक्ति मनुष्य की हत्या कर डाली। और जैसे उस स्थान में पहुंच गया तो देखा कि एक तरुण था, जटाएं थी उसकी बालों में, और वो एक मुनि था, और उसके वक्षस्थल में ये तीर प्रवेश कर चुका था। बहुत तड़प तड़प के वहां पर गिर पड़ा था वो जमीन के ऊपर, और वो कहने लगा मुझसे कि आपने ऐसे करके क्या पाया, मैं तो एक तपस्वी ऋषि हूं यहां वन में निवास करने वाला, तो आपने मेरे ऊपर तीर क्यों छोड़ा, और मेरे यहां बूढ़े माता पिता हैं, अब उनका क्या होगा, अब यहां मुझे बहुत दर्द कर रहा है, तो ये तीर कृपया मेरे वक्षस्थल से निकालिए। तो दशरथ महाराज हिचकिचा रहे थे, पहले तो बहुत हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, ये गलती मुझसे कैसे हो गई, बहुत बड़ा पाप हुआ मुझसे, मेरे हाथों से। लेकिन उस युवक ने कहा, जिसका नाम था श्रवण कुमार, हालांकि इस नाम का वर्णन तो वाल्मीकि जी नहीं करते हैं, तो कहने लगे, नहीं डरो नहीं, शायद आप इस बात से डरे हुए हो कि जैसे ही तीर आप निकालोगे मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मेरे पिता वैश्य हैं, मेरी माता शूद्राणी हैं, तो इसलिए आप तीर निकाल लो। तो जैसे ही दशरथ महाराज ने तीर निकाल ली उस युवक के वक्षस्थल से, उस युवक का देहांत हो गया और बहुत दुखद दुखी अवस्था में दशरथ महाराज उनके बूढ़े माता पिता की ओर गए, उनको ढूंढ निकाला। माता पिता ने सोचा कि हमारा पुत्र वापस आया है, लेकिन दशरथ महाराज ने कहा कि नहीं, मैं पुत्र आपका पुत्र नहीं हूं, मैं दशरथ महाराज हूं। और अपनी पहचान कराई, फिर जो खबर थी वो दे दी। तो श्रवण कुमार के पिता के हृदय में बहुत धक्का पड़ा, शोकग्रस्त करने लगे, आपने क्या किया है राजन। वैसे मैं बहुत गहरी श्राप देता था कि आपकी मृत्यु हो जाती, परंतु आप स्वयं आए हैं मुझे बताने के लिए, इसलिए वो श्राप आपको नहीं दूंगा, लेकिन अब क्या होगा, लेकिन यही है कि आप याद रखना, जिस तरह से हमारे पुत्र के विरह में हम अब तड़प रहे हैं और हमारी मृत्यु अब शीघ्र ही होगी, उसी तरह से आप भी आपके पुत्र से अलग हो जाओगे और उसके विरह से आप इतने दुखी हो जाओगे कि आप अपने प्राण को शरीर में नहीं रख पाओगे। तो फिर अपने उन बूढ़े माता पिता को दशरथ महाराज अपने उनके पुत्र के पास ले गए, वहां पे अंतिम क्रियाएं करनी पड़ी। और जैसे ही अग्नि डाल रहे थे वो, तो वहां पे इंद्रदेव स्वयं चले आए। श्रवण कुमार का दिव्य शरीर स्वर्गीय शरीर था, प्रकाशमान तेजस्वी। उस श्रवण कुमार उस शरीर को लेकर या उसको लेकर वो अपने रथ में जा रहे थे स्वर्गलोक। और उन्होंने श्रवण कुमार के माता पिता को आश्वासन दिया कि आप चिंता नहीं कीजिए कि जिस गति की प्राप्ति आपके पुत्र की हुई है, उस गति की प्राप्ति आपको भी होनी है शीघ्र। तो जब इंद्र चले गए वहां से श्रवण कुमार के स्वर्गीय शरीर को लेकर, तो श्रवण कुमार के माता पिता दोनों ने अग्नि में प्रवेश कर दिया और उनको भी वैसे ही एक दिव्य स्वर्गीय शरीर प्राप्त हुआ और वो भी स्वर्गलोक चले गए। दशरथ महाराज वापस चले आए और अनेक वर्षों के बाद इस घटना की याद उनको आई और वो बता रहे थे। और जैसे कि उनको वो श्राप मिला था, उसके अनुसार ही वो ज्यादा समय टिक नहीं पाए, अपने पुत्र श्री राम के विरह में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ महाराज के देहांत के समय कौशल्या देवी बहुत दुखी हो गई, सभी लोग बहुत दुखी हो गए। उधर भरत को बुलवाना था, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न दोनों ही कैकेयी राज्य में गए थे, क्योंकि उनके मामा युधाजित ने आकर उनको ले जाना चाहा था। तो दशरथ महाराज का शरीर तेल में रखा गया ताकि वो बिगड़ ना जाए, और तेज चलने वाले घोड़ों पर दूत भेजे गए भरत को बुलाने के लिए। 7 दिन लगे इनको पहुंचने के लिए। उधर भरत महाराज ने शत्रुघ्न से कहा कि शत्रुघ्न, बहुत बुरे सपने मुझे आ रहे हैं, न जाने क्यों बहुत अशुभ लक्षण एक के बाद एक दिखाई पड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अशुभ होना ही होना है, तो मुझे पता नहीं है, मेरा दिल हृदय कांप रहा है। तो उसी समय फिर ये दूत चले आए और दूतों को आदेश मिला था कि भरत जी से ये नहीं कहना कि दशरथ महाराज का देहांत हो गया है, बस इतना कहना कि बहुत महत्वपूर्ण बात है, शीघ्र आपको अयोध्या लौट के आना होगा। तो भरत महाराज को जब संदेश मिला चिंतित तो हो गए, उनको पता चला कि समस्या तो कोई है, फिर निकल पड़े तुरंत। उन्हें भी पूरे 7 दिन लगे लौट के आने के लिए। तब तक दशरथ महाराज का शरीर वैसे ही रखा था और जैसे वापस आए सीधे अपने पिता महाराज दशरथ के कमरे में गए, देखा कि पिताजी है नहीं, फिर अपनी माता को मिलने गए। कैकेयी देवी बहुत प्रसन्न हुई अपने पुत्र को देखकर और बड़े प्रसन्नता से वर्णन करने लगी कि दशरथ भरत देखो अब ऐसे है कि तुम्हारे पिता से मैंने दिए 2 वरदान मांगे हैं। और सारी घटनाएं से सारी खबर जब दशरथ जब भरत महाराज को मिली तो वो इतने क्रोधित हो गए और अपनी माँ को कहने लगी कि तुम भी एक भयंकर काली के स्वरूप हो, तुम्हें नहीं पता कि तुमने कौन सा भीषण कार्य कर दिया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तो राम का सेवक हूं, राम के बिना मैं तो राज को बिल्कुल नहीं संभालूंगा, बल्कि मैं कल्पना ही नहीं कर सकता राम के बिना जीने के लिए, राज संभालने की बात तो दूर है, ऐसे दुष्ट कार्य क्यों किया आपने, मुझे बिल्कुल ऐसे राज की अभिलाषा नहीं है, ऐसे बहुत कुछ कहते गए भरत। कैके देवी को आश्चर्य हुआ कि अरे मैंने सोचा था कि भरत प्रसन्न होगा, अब भरत राजगद्दी को स्वीकार करेगा। फिर भरत आगे कहने लगा बिल्कुल मैं इस राज की जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा अयोध्या वन में, श्री राम को लेकर आऊंगा, श्री राम को राज सिंहासन पर बिठाऊंगा और मैं चले जाऊंगा वन में ताकि मेरे पिता का वचन जो है वो सही रहे, वो झूठ ना रहे, और इस तरह से मैं उनकी सेवा करूंगा। तो कैकेयी देवी को बड़ा दुख हुआ ये सुनकर और आगे चल के फिर सारे मंत्रियों से कहने लगे, मंत्रियों को बुलाया और कहने लगे कि कृपया आप विश्वास कीजिए, इस षड्यंत्र में मेरी कोई भूमिका नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मेरी माँ ऐसे करने वाली हैं, मैं तो बिल्कुल राज सिंहासन नहीं चाहता हूं, मैं तो सनातन रूप से श्री राम का सेवक हूं और मैं इसी क्षण में निकलूंगा वन के लिए श्री राम को वापस बुलाने के लिए। जितने भी लोग आ रहे थे सबको भरत बतलाते रहे कि सत्य क्या है, कि उनका कोई दोष नहीं था, श्री राम ही एकमात्र अधिकारी व्यक्ति हैं राजगद्दी पर बैठने के लिए। तो खैर ऐसे सारे महल में जब खबर पहुंच गई है, राज में खबर पहुंच गई कि भरत वापस पहुंचे हैं, तो फिर अब अंतिम क्रियाएं अभी किए करनी थी, तो दशरथ महाराज की अंत्येष्टि क्रियाएं हो गईं स्मशान में। भरत ने वो सारे कार्य संपन्न कर लिए। उधर शत्रुघ्न और भरत जिनकी जोड़ी बहुत निकट की थी वो मंथरा को मिलने चले गए, क्योंकि उनको पता चला कि मंथरा वो है जिन्होंने कि कैकेयी को भड़काया था। तो भरत आके काफी डांटने लगे मंथरा को, शत्रुघ्न अपने आप को संभाल नहीं पाए, मंथरा को हाथ से पकड़ा और घसीट लिया जमीन के ऊपर और आक्रमण करने वाले थे, प्रहार करने वाले थे कि बड़े मुश्किल से भरत ने शत्रुघ्न को रोक दिया कि कहा कि देखो एक स्त्री के ऊपर ऐसे हाथ उठाना नहीं चाहिए, स्त्री की हत्या करना तो बहुत बड़ा पाप होता है, तो जो हो गया सो हो गया, अपने आप को संभाल लो। तो ऐसे किसी न किसी तरह से सांत्वना दे दी, शांत कर दिया शत्रुघ्न को। और भरत ने आदेश दिया मंत्रियों को, हे सुमंत्र आप एक ऐसे राजमार्ग को तैयार कीजिए वन की ओर, और जैसे ही राजमार्ग तैयार हो जाएंगे मेरी सेना को तैयार कीजिए, साथ साथ में ऋषि मुनि मंत्रीगण सब मेरे साथ में आने चाहिए, मैं सीधे जाऊंगा चित्रकूट जहां पर श्री राम हैं और उनसे मैं निवेदन करूंगा, उनके चरण कमलों में पड़ के ऐसे निवेदन करूंगा कि वो यहां पर वापस चले आए, मैं किसी भी अवस्था में राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो सुमंत्र ने सारी व्यवस्था कर दी, जितने भी दक्ष लोग थे वो सब रास्ते तैयार करने के लिए रह आ गए, और बहुत ही कम समय में रास्ता एक बड़ा सा राजमार्ग तैयार हो गया। सारी प्रजा आश्चर्यचकित हो गई कि इतने कम समय में इतना सुंदर रास्ता कैसे तैयार हुआ। भरत महाराज निकल पड़े अपनी सेना को साथ में लेकर, प्रतिष्ठित नागरिक भी उनके साथ में थे, तीन माताएं भी भरत जी के साथ में निकल पड़ी। चलते चलते वो जब गुह के आश्रम में पहुंचे तो गुह ने स्वागत तो किया, वो भरत जी को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन गुह के मन में संशय भी था कि भरत के मन में क्या उद्देश्य है, क्या इच्छा है। फिर सामने से गुह ने भरत से कहा कि कहीं है भरत, आप इस उद्देश्य से तो नहीं यहां आए कि आप राजगद्दी पर बैठना चाहते हो, इसलिए राम को आप खत्म करना चाहते हो। तो भरत का दिल बहुत बेचैन हो गया कि हे गुह, आप मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो, मैं तो राम का सेवक हूं, मैं तो केवल यहां पे आया हूं श्री राम को वापस ले जाने के लिए। तो गुह ने स्वीकार कर ली भरत की बात को। पहले से गुह ने व्यवस्था की थी, उनके 100 नौके जितने भी थे उनके साथ 100-100 सैनिकों को रखा कि कहीं बलपूर्वक यदि भरत जाना चाहे तो रोक दिया जाए। परंतु तो अब जब वो समझ गए कि भरत महाराज का उद्देश्य क्या था, फिर उन्होंने व्यवस्था की उनको नदी पार कराने के लिए। जितने भी मनुष्य थे, घोड़े थे, वो नौके में बैठ के गंगा पार कर गए। दूसरी ओर जो हाथी थे वो तैर के नदी पार करके चले गए, और आगे चलते चलते वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ पहुंचे। भरद्वाज मुनि ने भी स्वागत किया भरत का और कहा कि यहाँ आप रहिए थोड़े दिनों तक। और उन्होंने देवताओं से निवेदन किया और एक ऐसी दावत की योजना व्यवस्था की भरद्वाज मुनि ने देवताओं के द्वारा कि सभी लोग चकाचौंध रह गए। यहां तक वाल्मीकि मुनि काफी विस्तार में वर्णन करते हैं। अभी हम जिन पदार्थों को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजनों को अर्पण किया भरद्वाज ने भरत आदि को, उनका वर्णन नहीं करेंगे, फिर कथा से ध्यान हट जाएगा और वैसे भी प्रसाद का समय होने को आया है। तो एक ही बात कहता हूं कि एक नदी थी खीर की, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे व्यंजन बनाए होंगे भरद्वाज मुनि ने। तो वनों में रहते हुए भी ऐसे कोई समृद्धि या कोई व्यवस्था की कमी नहीं हुआ करती थी यदि वो चाहते तो, परंतु जानबूझकर वो सरल जीवन जिया करते थे। लेकिन अब जब भरत जी वहां आए थे तो बड़े शानदार व्यवस्था उन्होंने कर ली। फिर वो आगे चले गए, भरद्वाज मुनि ने सांत्वना दे दी, भरत महाराज को देखो आपके पिता आपके माता कैकेयी का ये दोष नहीं है, क्योंकि भगवान के द्वारा ये सब आयोजित हुआ है, देवताओं का कोई विशेष प्रयोजन है इसके पीछे, आपकी माता केवल एक निमित्त है और ये सही है। यदि कैकेयी देवी ने ऐसे नहीं किया होता तो आगे चल के रामायण की कथा चलती कैसे। तो भगवान की इच्छाओं को पूर्ण करना था, भगवान अपने अनेक उद्देश्यों की पूर्ति एक कार्य से कर लेते हैं। तो ऐसे शांत होकर भरत अपनी माताओं को मंत्रियों को आदि साथ में लेकर चित्रकूट की ओर चल पड़े। उस समय श्री राम सीता और लक्ष्मण बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने बहुत आवाज सुनी दूर दूर से, लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जाके देखो तो सही कि क्या हो रहा है। लक्ष्मण एक वृक्ष के ऊपर चढ़े और दूर से देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ी सेना आ रही है। तो उन्होंने दशरथ महाराज के हाथी को देखा, लेकिन दशरथ महाराज नहीं थे, शायद हमारे पिता आ रहे हैं हमसे मिलने, परंतु दशरथ महाराज नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि उस समय श्री राम को और लक्ष्मण को पता नहीं था कि दशरथ महाराज का देहांत हो गया था। तो फिर लक्ष्मण ने देखा कि वहां ध्वज है एक रथ के ऊपर, कोविदार वृक्ष का चिन्ह है, अरे ये तो भरत है, सेना को लेकर आ रहा है। तो लक्ष्मण ने कहा कि हाँ, लक्ष्मण का उद्देश्य है कि वो सेना को साथ में यहां ले आकर हे राम आपकी हत्या करे, ताकि कांटे उसके रास्ते से निकल जाए और वो राजगद्दी पर बैठे। तो श्री राम कहने लगे, लक्ष्मण ऐसा नहीं है, राम का उद्देश्य यही है, मैं जानता हूं भरत को, कि भरत का उद्देश्य यही है कि वो यहां आकर मुझे वापस बुला के ले जाना चाहता है, मुझे राज सिंहासन पर बिठाना चाहता है। तो राम को अच्छा नहीं लगा जब लक्ष्मण ने ऐसे संशय किए भरत के ऊपर। तो फिर राम ने लक्ष्मण से कहा, मुझे ऐसे लगता है लक्ष्मण कि तुम भरत की हत्या करके खुद राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो। तो ऐसे डांट सुनने के बाद लक्ष्मण चुप हो गए, समझ गए कि भरत के इरादे अच्छे थे। और फिर वो वहां पर रहे, उधर भरत अपनी माताओं को साथ में लेकर, सेना को साथ में लेकर वहां आ पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो फिर वहां क्या हुआ, दशरथ महाराज, कृपा कीजिए, भरत और श्री राम के बीच में संवाद क्या हुआ, किस तरह से उन्होंने श्राद्ध आदि संपन्न किया और आगे क्या घटनाएं हुई, यदि आप ये सब सुनना चाहते हैं तो आप अवश्य कल आइए। कल रामनवमी है, कल कथा का समय कुछ अलग है, शाम को कार्यक्रम नहीं होगा, तो आपको सूचनाएं दी जाएंगी, कृपया आप सही समय पर आइएगा, रामनवमी के त्योहार में अच्छी तरह से आप शामिल हो जाइएगा। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री राम नवमी महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
तो कल के हरे